नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन दिनों में आप प्रभु के वचन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, लेकिन इससे पहले हम पिछले अध्ययन के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने राष्ट्र का न्याय, यीशु को मारने की योजना, मरियम के द्वारा बैतनिया में यीशु पर इत्र उंडेला जाना, यीशु को बेचने के लिए यहूदा का षड्यंत्र, फसा का पर्व और अंतिम भोज आदि विषयों पर हमने विचार किया था। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को बढ़ाते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 23 से 25 पद को पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? मित्रों, यह एक मजेदार बात है कि यहूदा ने उससे प्रभु नहीं कहा, जैसा कि अन्य शिष्यों ने कहा। हम 22 पद में देखते हैं, और यहूना की लेख के अनुसार वह उसी समय कमरा छोड़कर बाहर निकल गया। यहूना 13 अध्याय उसके 30 पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। आगे हम मत्ती 26 अध्याय उसके 26 से 28 पद में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु लुप्त हो रहे फसा के पर्व के ऊपर प्रभु भोज के अनुष्ठान को स्थापित करते हैं। फसा के समय कटोरे को 7 बार घुमाया जाता था, अर्थात 7 बार उसकी परिक्रमा होती थी, और यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आखिरी बार में यीशु ने प्रभु भोज के अनुष्ठान को स्थापित किया। फसा के समय में, अर्थात फसा के पर्व के समय में, वे स्तुति के भजन गाते थे, जो भजन संहिता 111 से 118 में मिलता है। इसलिए जब भी आप उसे अपने आत्मिक लाभ के लिए पढ़ते हैं तो इस बात को अपने मस्तिष्क में रखें कि हमारे प्रभु ने भी उस शुभ रात्रि में इन गीतों को गाया था। उस अंतिम भोज में उसने अपने लिए एक नए स्मारक को खड़ा किया। यह किसी संगमरमर या पीतल की धातु का नहीं बना, परंतु यह एक साधारण तत्व रोटी और दाखरस से बना था। ये दोनों ही उसके मृत्यु के बारे में कहते हैं, जबकि वह फिर से ना आ जाए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। मित्रों, सहस्त्राब्दी में फसा फिर से स्थापित किया जाएगा। प्रभु ने कहा कि वह अपने राज्य में फिर से दाखरस पिएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय फसा का पर्व उसकी क्रूस की मृत्यु की तरफ देखेगा। फसा का पर्व जो शताब्दियों से उसके आने की राह देख रहा था, वह सहस्त्राब्दी के समय में भी उसके आने की तरफ देखेगा। हम मत्ती उसके 26 अध्याय और 30 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि पत्रस के इनकार की भविष्यवाणी, जिसे मत्ती 26 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यह उद्धरण जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक से लिया गया है, जिसे हम जकर्याह 13 अध्याय उसके 7 पद में देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 26 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मित्रों, पतरस के उत्तर ने यह दर्शाया कि उसने अन्य शिष्यों पर भी भरोसा नहीं किया, परंतु प्रभु निश्चित रूप से उस पर भरोसा कर सके। पतरस की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह स्वयं को नहीं जानता था, और यही समस्या आज हम में से कई लोगों की भी है। हम मत्ती 26 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। जब पतरस ने कहा कि वह हमारे प्रभु का इनकार नहीं करेगा, यह समय शाम होने वाली थी। जी हाँ, वह हमारे प्रभु के साथ मरने के लिए भी तैयार था, परंतु उसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले उसने प्रभु का एक बार नहीं परंतु 3 बार इनकार किया। आइए अब हम आगे गेतसमनी के बारे में देखते हैं। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसके 36 से 39 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गेतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मित्रों, यहां पर हमारे प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कटोरा स्पष्ट रूप से उसके क्रूश को चित्रित करता है, और उस कटोरे में जो कुछ है वह सारे जगत के पाप हैं। मृत्यु और क्रूश पर की भयानक यातनाएं मृत्यु से भी बढ़कर है, जिसे हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं। यह ऐसा है, यीशु जो पवित्र, हानि रहित और पापियों से अलग था, उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। वहां क्रूश पर किसी न्यायिक या अव्यवहारिक रीति से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में मानव जाति के पाप उस पर लादे गए। हम उस विभत्सा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसका अनुभव यीशु ने उस समय किया जब उसके ऊपर पाप लादे गए थे। यह एक पवित्र जन के लिए बहुत ही विभत्सापूर्ण अनुभव है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि वह क्रूस की मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए या बचने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, आपके लिए और मेरे लिए पूर्ण अभिप्राय के साथ गेतसमनी में प्रवेश करना असंभव था, परंतु मैं सोचता हूं कि वहां पर उन्होंने कलवरी पर विजय प्राप्त की। निस्संदेह गेतसमनी में भी शमौन ने उसकी परीक्षा ली, जैसे कि उसने पहले निर्जन प्रदेश में ली थी। मित्रों, पद 42 पर ध्यान दें, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे लिए पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वह उसे स्वीकार कर रहे थे, इसलिए यह कहना कि हमारे प्रभु क्रूस पर मरने से बचने की कोशिश कर रहे थे, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। मित्रों, जब संसार का पाप उनके ऊपर लाद दिया गया तो अपनी मानवता में उन्होंने एक नफरत और भयानक घृणा का अनुभव किया, और कुछ क्षण के लिए वह इससे पीछे हट गए, परंतु उसने अपने आप को पिता को सौंप दिया, क्योंकि वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। आइए अब हम उन शिष्यों को देखें जो उसके साथ गेतसमनी के बगीचे में थे। वे पतरस, याकूब और यहोना थे। अपनी पहली प्रार्थना को समाप्त कर वह उनके पास आए, लेकिन उसने उन्हें सोते हुए पाया। हम मत्ती उसके 26 अध्याय और उसके 40 और 41 पद में पढ़ते हैं, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मित्रों, यहां पर परीक्षा क्या थी, कौन उनकी परीक्षा लेने वाला था, इसके लिए शैतान वहां पर था। यीशु ने अदृश्य शत्रु के साथ संघर्ष किया जो बिल्कुल स्वाभाविक है, और गतसमनी में उसने उस शत्रु पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि कलवरी पर की विजय हम मत्ती सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 42 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मित्रों, यहां पर वह अपने आप को पिता की इच्छा पर समर्पित करते हैं, और आगे हम मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय के 43 से 45 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब उसने आकर उन्हें फिर से सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर से कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, अब सोते रहो और विश्राम करो। वास्तव में इस पद और अगले पद के बीच में कुछ समय का अंतराल है। उसने उन्हें सोने के लिए नहीं कहा और अगले ही क्षण वह उन्हें उठने के लिए कहते हैं। उनके लिए थोड़ी नींद लेने का समय था और उन्हें इस आराम की आवश्यकता थी। कृपया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार हमारे प्रभु उनके शारीरिक आवश्यकता की ओर ध्यान देते हैं। जब वे थोड़े देर के लिए सो चुके तब उसने कहा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय और उसके 46 और 47 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। मित्रों, वास्तविकता यह है कि यहूदा इस्करियोती और यीशु के शत्रुओं ने भी बहुत चमत्कारों को देखा था, जिससे उन्हें पता था कि यीशु के पास अलौकिक शक्ति है और हो सकता है कि वह इस शक्ति का उपयोग कर ले। इसलिए जब उसे पकड़ने के लिए वे आते हैं तो साथ में पूरी भीड़ को लाते हैं। संभवतः ऐसा लगता है कि सभी सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ने अर्थात गिरफ्तार करने के लिए आ गए थे। हमें पता है कि पिलातुस को यरूशलेम अच्छा नहीं लगता था और वो वहां पर सिर्फ पर के दिनों में आता था, और जब भी वो वहां आता था तो अपने साथ कई सुरक्षा के दल को लाता था ताकि व्यवस्था बनी रहे और पर्व के दिनों में वहां पर दंगे ना हो। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 48 पद में पढ़ते हैं, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लू वही है, उसे पकड़ लेना। मित्रों, वह विश्वासघात का एक गर्म चुंबन इतिहास की लेखों में से एक सबसे बुरी बात है। हम मत्ती 26 उसके 49 और 50 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। मित्रों, भजन संहिता 2:12 में देखें कि चुंबन एक स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का प्रतीक हो सकता है। यहाँ पर यहूदा प्रभु यीशु को एक विश्वासघात वाला चुंबन देता है, और यह मनुष्य के सबसे घृणित कार्यों में से एक था। कुछ धर्म विज्ञानियों का मानना है कि यहूदा को पहले से ही इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए यहूदा कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, यदि यह सच है तो यहूदा रोबोट से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि यहूदा ने स्वयं हमारे प्रभु को धोखा देने का निर्णय लिया और उसे अपनी योजना को बदलने के सुअवसर भी मिले थे, और हो सकता है कि आप कहें जी हाँ, परंतु यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह यीशु को पकड़वाएगा। मुझे आपके साथ सहमत होना पड़ेगा कि यह भविष्यवाणी की गई थी, और हमारे प्रभु ने मनुष्यों में से उसे चिन्हित कर दिया था कि वह उसे पकड़वाएगा। जो भी हो, जब यहूदा ने भविष्यवाणी पूरी कर दी और प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद में भी वह पश्चाताप कर सकता था, यीशु ने उसे एक अंतिम मौका भी दिया ताकि वह पश्चाताप करे और उसे स्वीकार कर ले। यहां तक कि जब यहूदा ने विश्वासघात का एक गर्म चुंबन यीशु को दिया, फिर भी उसने उसे मित्र कहा। बाद में जब यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए दिए गए पैसों को लेकर मंदिर में गया और उसे फेंक दिया, उस समय वह अपने विचारों को बदल सकता था। और जब याजक यीशु को पिलातुस के पास लेकर जा रहे थे, उस समय यहूदा यीशु के चरणों में गिरकर कह सकता था कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और संभवतः प्रभु उसे क्षमा कर देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मित्रों, हम मत्तियो सुसमाचार के 26 अध्याय और उसके 51 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हम जानते हैं कि वह कौन था। वह शमौन पतरस था और मैं सोचता हूं कि वह कुछ प्रमाणित करना चाहता था। पहले उसने घमंड किया था कि वह यीशु की रक्षा के लिए अपना प्राण दे देगा, परंतु यीशु ने उससे कहा कि आज रात तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। अच्छी बात है कि पतरस को कहीं से तलवार मिल गई और वह अपने प्रभु की रक्षा करने लगा, परंतु पतरस एक मछुआरा था, एक तलवार चलाने वाला व्यक्ति नहीं। उसने एक व्यक्ति के कान को काट दिया, जबकि वह कान नहीं परंतु सिर काटना चाहता था। वह उस व्यक्ति के सिर को अलग करना चाहता था, लेकिन उसका निशाना चूक गया। हम मत्ती उसके 26 अध्याय उसके 52 और 53 पद में आगे पढ़ते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। दूसरे शब्दों में कहें कि पतरस, मुझे तुम्हारी तलवार नहीं चाहिए। मैं धार्मिक अगुओं के विरोध में लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, परंतु मैं तो संसार के पापों के बदले में मरने के लिए आया हूं। हम मत्ती 26 उसके 54 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही हो आवश्यक है क्यों कर पूरी होंगी। आप यहां पर देखिए कि हमारे प्रभु पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा कर रहे हैं और मत्ती इसे स्पष्ट रूप से करते हैं। मत्ती 26 अध्याय के 55 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मित्रों, पहले उसका समय नहीं आया था, परंतु अब उसका समय आ पहुंचा है। मत्ती 26 के 56 पद में आगे लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु ने यह भविष्यवाणी की थी कि अब उसके सभी शिष्य उसे छोड़ देंगे। अब हम आगे देखते हैं महापुरोहित या महायाजक के महल में। मत्ती 26 उसके 57 पद में हम पढ़ते हैं, और यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिय इकट्ठे हुए थे। मित्रों, बाद में हम पाते हैं कि वास्तव में इन सारी बातों को उकसाने वाला काइफा का ससुर था, परंतु यीशु को काइफा महायाजक के पास लाना ही था कि उस पर पहले दोष लगाया जाए, क्योंकि धार्मिक अगुए रोमी साम्राज्य से यीशु को मृत्युदंड देने के लिए मांग करने वाले थे। इसलिए उन्हें उसी रात में यह निश्चित करना था कि कौन सा दोष उस पर लगाया जाए, इससे पहले कि वे उसे सुबह पिलातुस के पास ले जाते। हम मत्ती 26 के 58 पद में पढ़ते हैं, और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। मित्रों, पतरस कुछ दूर उसके पीछे पीछे गया। हमें से किसी के लिए भी जब हम दूरी रखकर यीशु के पीछे पीछे चलते हैं तो खतरा होता है। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 15 और 16 पद में बताया गया है कि पतरस को यूहन्ना की मदद से आंगन में प्रवेश मिला। उसने वहां पर आखिर में क्या होता है यह देखने की प्रतीक्षा की, और थोड़े समय के बाद ही वह प्रभु यीशु का इनकार करेगा। हम मत्ती 26 के 59 और 60 पद में पढ़ते हैं, महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि यीशु पर दोष लगाने के लिए धार्मिक अगुओं को कोई भी दोष नहीं मिला, इसलिए उन्हें झूठे गवाहों को ढूंढना पड़ा। और एक झूठे गवाह को ढूंढने या पाने की समस्या यह थी कि उस गवाह को पूछताछ के दौरान अपनी बात पर अटल रहना था, और हो सकता है कि पिलातुस थोड़ा जिज्ञासु हो जाए, जो कि वो था, और गुस्सा देने वाला प्रश्नों को पूछ ले। तब अंत में उन्हें दो झूठे गवाह मिल ही गए। हम मत्ती 26 उसके 61 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अंत में दो जनों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। मित्रों, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 19 से 22 पद के अनुसार शिष्य भी यीशु को गलत समझ बैठे जब उसने यह कथन कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। जब तक यीशु मृतकों में से नहीं जी उठा, वे इस बात को नहीं समझ पाए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो व्यक्ति झूठी गवाही देने के लिए खड़ा किया गया है वह ऐसा ही था जो यीशु के इस कथन को समय के साथ नहीं समझ पाया, परंतु ध्यान दे कि उसने उसके कथन को अपने कथन में सही रूप से नहीं कहा। मत्ती 26 उसके 62 पद में लिखा है, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, वह कोशिश कर रहा था कि प्रभु यीशु उत्तर दे ताकि महासभा को पता चले कि किस प्रकार के वाद विवाद का प्रयोग करें। जो दोष उस पर लगाए गए थे वह पूर्णतः खींचतान कर लगाई जाने वाली बातें थी कि हमारे प्रभु ने उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया। मत्ती 26 उसके 63 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। मित्रों, अब महायाजक उसे शपथ दिलाकर निश्चित प्रश्न पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तब हम आगे पढ़ते हैं 26 के 64 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तू मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही कहा, यह इस प्रकार से कहने के बराबर है कि हाँ तूने कह दिया कि मैं कौन हूं। यीशु अपने लिए मनुष्य का पुत्र होने की उपाधि का दावा करते हैं। डॉक्टर वाल्फिल ने कहा है कि यह एक उच्चतम उपाधि है जो प्रभु के पास थी। इस उपाधि को भविष्यवक्ताओं ने उपयोग किया, देखें दानियल और यहेजकेल की पुस्तक में। यह ईश्वरत्व की एक उपाधि थी। वह इन सबसे बढ़कर किसी और उपाधि का दावा कर सकता था कि वह मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और स्वर के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस उपाधि के दावा करने से बढ़कर और कोई बड़ा दावा नहीं कर सकते थे। हम मत्ती सुसमाचार के 26 अध्याय उसके 65 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों की क्या प्रयोजन। तब महायाजकों ने अर्थात महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। अपने वस्त्र को फाड़ देना यह दर्शाता है कि वह इस निंदा सुनकर बहुत अधिक दुखी हुआ। वे ये सोचते हैं कि उनके पास अब यीशु मसीह के विरोध में कोई दोष है। हम मत्ती 26 उसके 66 से 68 पद में आगे पढ़ते हैं, देखो तुमने अभी तक निंदा सुनी, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। मित्रों, उन्होंने प्रभु यीशु से कैसी घृणा की कि उसकी अच्छाई, धार्मिकता, पवित्रता और वास्तविकता की कि वो स्वयं परमेश्वर हैं, इसके लिए मानव जाति के हृदय में इस प्रकार की बातें थी। स्वाभाविक प्रतिरोध था। मेरे मित्र, क्या आप इसे मानते हैं कि यदि आपका और मेरा सिर्फ पुराना ही स्वभाव होता तो हम परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटाने की कोशिश करते? कुछ वर्षों पहले लोगों की भीड़ ने यह कहा कि परमेश्वर मर गया है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे उसको उसके सिंहासन से अलग करना चाहते थे। मानव स्वभाव उससे घृणा करता है। यहां महासभा में उसे थप्पड़ मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, मुक्के मारे गए और उसकी हंसी उड़ाई गई, यह कहकर कि हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता कि किसने तुझे मारा। उन्होंने उसके साथ खेल खेला, पहले उसके आंख पर पट्टी बांधी ताकि वो देख ना सके, तब उसके चेहरे पर मारा और उससे बताना था कि किसने उसे मारा है। और यह सच है कि उसे सही व्यक्ति को बताने के लिए बहुत कठिन होता। आगे हम देखते हैं कि पत्रस यीशु का इनकार करते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से दूसरे सुसमाचार के लेख में देखेंगे। तो अब हम मत्ती सुसमाचार उसके 26 अध्याय और उसके 69 से 73 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। मित्रों, यहूदा में जो उच्चारण का उपयोग होता था वह गलील प्रदेश से थोड़ा भिन्न था, इसलिए पतरस के उच्चारण गलील के थे। हम मत्ती उसके 26 अध्याय के 74 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। इस कमजोर व्यक्ति ने यह नहीं जाना कि वह वास्तव में कितना कमजोर व्यक्ति था, परंतु हमारे प्रभु ने प्रार्थना की कि उसका विश्वास कमजोर ना हो, और वो नहीं हुआ। हम मत्ती 26 के 75 पद में आगे पढ़ते हैं, तब पतरस को यीशु की कही हुई बातें स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। शमौन पतरस गलत स्थान पर था, यह उसके लिए एक परीक्षा का स्थान था। उसके इनकार के आधार के लिए कोई भी कारण नहीं दिया जा सकता है। वह इस घृणित कार्य के लिए दोषी था। जो भी हो, पतरस ने पश्चाताप किया और फिर से अपने प्रभु की संगति में लौट गया, जिससे वह प्रेम करता था। पिंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा के उतरने के बाद वास्तव में पतरस ही वह है जिसे उसने अपना पहला संदेश प्रचार करने का अवसर दिया, और उस दिन 3,000 लोग प्रभु की संगति में जुड़ गए, अर्थात बचाए गए। मित्रों, क्या आप बचाए गए झुंड में हैं या अभी भी खोए हुए हैं? आज प्रभु आपको भी बचाना चाहते हैं, आपकी बीमारी से, आपकी परेशानी से, आपके पापों से। क्या आप बचना चाहते हैं? प्रभु यीशु पतरस की तरह आपको भी पश्चाताप का मौका देते हैं। यदि आप अपनी गलती व पापों को मान ले तो वह आपको भी क्षमा कर पतरस की तरह आशीष देंगे। प्रभु आपको निर्णय लेने में मदद करे और आपकी सहायता करे। प्रभु का आशीष आपके साथ सदैव बना रहे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Oh.